तारापरी जैसे ही मेन रोड पर आई, उसके पास से कुछ साए गुजरे और उन सायों में से एक साए पर तारापरी का हाथ टच हो गया। वे जो भी थे, बिजली किसी तेजी से गुजरे थे। एक साए से तारापरी का हाथ टच होते ही तारापरी की आंखें बंद होने लगीं और उसे विजुअल आना शुरू हो गए। आंखें बंद करके उसने देखा, कुछ सायों ने अमन सिंह राठौर के बंगले पर हमला कर दिया था और उन्होंने अमन की माँ यानी करिश्मा जी पर अटैक कर दिया था, और वे लोग उनसे किसी चीज के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन करिश्मा जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो उन लोगों ने एक चमकती सी चीज से उन पर हमला किया था। अभी तारापरी और देख ही रही थी कि आंखें बंद होने की वजह से उसे एहसास ही नहीं रहा कि वो रोड पर खड़ी है, और अचानक उसका सर तेज दर्द करने लगा और वो वहीं रोड पर गिरने वाली थी। लेकिन अमन वहां वक्त पर पहुंच चुका था और उसने उसे नीचे गिरने से पहले ही संभाल लिया। तारापरी मूर्छित अवस्था में थी। अमन ने उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया और पानी की बोतल उसके ऊपर छिड़क दी और कुछ पानी उसे पिलाने लगा। तारापरी होश में आने लगी थी। उसके होश में आते ही अमन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था और अब तुम ठीक तो हो ना? लेकिन होश में आते ही तारापरी ने बोलना शुरू कर दिया, अमन सर, वो करिश्मा, करिश्मा जी, उनकी जान खतरे में है। अमन तारापरी के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसी बात सुनकर शॉक हो गया और बोला, तुम पागल हो क्या? भला मेरी माँ को क्या खतरा हो सकता है? तब तारापरी ने कहा, सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी देखा, कुछ काले साए वाले लोग करिश्मा मैडम को मार रहे थे। अमन को तारापरी की बात फिजूल लग रही थी और वो बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर तक चलने के लिए लिफ्ट चाहिए तो तुम वैसे ही ले सकती हो, तुम्हें ये कहानियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अमन को पूरा यकीन था, जरूर इसने कोई ख्वाब देखा होगा या कहानी बना रही होगी, भला उसकी माँ को कौन मार सकता था? उसकी माँ कोई आम औरत नहीं थी, वे जिन्नों की रानी थी जिसके पास असीमित शक्तियों का खजाना था। अमन का जवाब सुनकर तारापरी का मुंह लटक गया था और एक बार को उसके भी दिमाग में आ गया था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, भला इन शक्तिशाली जिन्नों को भी कोई मार सकता है क्या? बस यही सोचकर तारापरी अमन की गाड़ी से नीचे उतरने लगी और बोली, मैं अपने आप जा सकती हूँ, आपको मुझ पर कोई एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अमन एक झटके से उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें अकेले जाने देता, लेकिन चूंकि तुम बीमार हो तो केवल आज तुम मेरे साथ चल सकती हो, इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को कोई बात बनाए कि अमन सिंह राठौर अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की का ध्यान नहीं रख सका और उसे अकेले जाने दिया। तारापरी एक गहरी सांस लेकर रह गई और वापस जाकर अमन की गाड़ी में बैठ गई। उसकी गाड़ी में बैठते ही अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अपने बंगले की ओर रवाना हो गया। तारापरी गाड़ी में बैठे ही मन यही सोच रही थी कि जब ये मुझसे इतना प्यार करता है तो ऐसे नफरत करने का दिखावा क्यों करता है। वहीं अमन सोचने लगा, तुम्हारा और मेरा कोई मिलन नहीं है, तुम अगर दिन हो तो मैं रात हूं, तुम अगर रोशनी हो तो मैं एक अंधेरा हूं, हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी हो, हो सके तो मुझे अपना दिल दुखाने के लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे सकता हूं, अगर तुम मेरे करीब आई तो हर पल तुम्हारी जान को खतरा रहेगा और मैं तुम्हें हर खतरे हर परेशानी से दूर रखना चाहता हूं, मेरी ये कड़वी बातें ही तुम्हें मुझसे दूर रखने में मदद करेंगी। अमन अपनी सोच में गुम था और जल्दी ही उसने अपने बड़े से शानदार बंगले के आगे अपनी गाड़ी रोक दी थी। बंगले के सामने गाड़ी रुकने पर तारापरी को एक बार फिर अपना विजुअल याद आने लगा था और वो थोड़ा सहमते हुए बंगले में जाने लगी थी। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, वहां एक अजीब सी खामोशी थी। अमन ने अंदर जाते ही मॉम मॉम कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। जब तीन बार आवाज लगाने पर भी करिश्मा जी बाहर नहीं आई तो अमन को भी कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने एक बार और पुकारा मॉम, तो एक बड़ी ही खूबसूरत काली साड़ी, काली ज्वेलरी से बना हुआ श्रृंगार करके करिश्मा जी बाहर आ गईं। अमन और तारापरी चौंक कर उन्हें देखने लगे थे। अमन अपनी माँ के पास गया और बोला, ये क्या है मॉम, आप इतना बदली बदली से कैसे लग रही हो और आप थी कहाँ, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था? करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओहो बेटा, तुम तो जानते ही हो इन हाई सोसाइटी के लोगों को, वो मेरी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स है ना, निर्मला और काव्या और बाकी सारी दोस्तों ने मिलकर आज मेरा मेकओवर किया है, और बेटा मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई, तू तो जानता है वो लोग कितनी जिद्दी हैं, और तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे, वो बेटा मैं तो अंदर ही थी, तुम्हारी आवाज अभी सुनी तो बाहर आई हूँ, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अमन हल्का सा मुस्कुराकर ओके मॉम कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वहीं तारापरी करिश्मा जी को खड़ी हुई घूर ही रही थी। करिश्मा जी उसे देखकर बोली,
है तरकी, तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा, जा जाकर हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। ये मेरा बेटा भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से किसे किसे उठाकर घर ले आता है, न जाने और कब तक ये यहाँ रहेगी। तारापरी को करिश्मा जी की बात सुनकर गुस्सा आ गया था और वो बिना उन्हें कुछ बोले और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। तारापरी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी, जो भी कुछ उसने देखा था उसे एक एक करके याद आ रहा था और घर आकर करिश्मा जी का ऐसा रूप उसे दाल में कुछ काला होने का एहसास करा रहा था। न जाने क्यों इस बदली बदली सी करिश्मा पर उसे शक हो रहा था। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। तारापरी करिश्मा जी की हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जैसे ही अमन आया, सर्वेंट ने खाना सर्व किया। करिश्मा जी तरह तरह के खाने को देखकर अजीब सा व्यवहार करने लगी थी, मानो पहली बार उन्होंने इतना खाना एक साथ देखा हो, और वे बेसब्र होकर अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। अमन को करिश्मा जी की ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि करिश्मा जी सबसे पहले अपने बेटे की प्लेट में खाना परोसती थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी प्लेट में खाना निकाला था। अमन ने तारापरी की तरफ देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली और दोनों ने एक साथ झुककर पी ली। वो अमन और तारापरी खाना खाकर उठकर जाने लगे। तब अमन ने देखा करिश्मा जी अभी भी खाना खाने में लगी हुई थी। वो इस तरह से खाना खा रही थी मानो उन्होंने पहली बार खाया हो। वो अमन ज्यादा ना सोचकर अपने कमरे में चला गया था, लेकिन तारापरी को करिश्मा जी का बिहेवियर काफी वियर्ड लग रहा था।
तारापरी ने सोचा, वो कोई आम इंसान नहीं है, किसी न किसी से तो वो टकराई थी, और वे जो भी थे वो काफी तेजी से उसके पास से गुजरे थे, और जो कुछ भी उसने देखा उसमें कुछ तो ऐसा था जो सच था। और ये करिश्मा मैडम का व्यवहार अचानक से क्यों बदल गया, जबकि कल तक तो वो मुझसे भी इतना अच्छा बर्ताव कर रही थी। और अगर मेरी विजुअल वाली बात सच है तो इसका मतलब साफ था, ये जो औरत यहाँ करिश्मा मैडम की जगह पर थी, ये करिश्मा मैडम नहीं थी, ये कोई और थी। और इसका मतलब साफ था, ये जो भी थी यहाँ जरूर किसी मकसद के तहत आई थी।
मुझे इसके बारे में अमन सर को बताना होगा, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन क्यों करेगा, उन्हें तो यकीन ही नहीं है। मैंने अपना विजुअल भी तो उन्हें बताया था, उसे भी उन्होंने मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी बोल दिया था। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर असली करिश्मा जी नहीं मिली तो हमारी शादी कौन कराएगा। मुझे जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाना होगा, तभी मैं अपने मकसद में आगे बढ़ पाऊंगी, तारापरी ने दृढ़ निश्चय करते हुए सोचा और अमन से बात करने के लिए उसके कमरे की ओर चल पड़ी। तारापरी जैसे ही अमन के कमरे के बाहर गई, उसे अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। अंदर वो नकली करिश्मा जी अमन से बात कर रही थी। अमन कह रहा था, आप फिक्र ना करें मॉम, तिलिस्मी पत्थर जहाँ कहीं भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप उसकी फिक्र करना छोड़ दो, अमन सिंह राठौड़ उस पत्थर की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेगा। तभी उस नकली करिश्मा जी की आवाज़ आई, मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा ये जानने का पूरा पूरा हक है कि तुमने वो कीमती तिलिस्मी पत्थर कहाँ छुपा कर रखा है। अमन बोला, माँ मैंने आपसे कहा ना, उस तिलिस्मी पत्थर के बारे में मैं आपको बताकर आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, तो वो राज आप मुझ तक ही रहने दीजिए। लेकिन बेटा, अभी करिश्मा जी कुछ और कहना चाहती थी कि तभी अमन बीच में बोल पड़ा, लेकिन मॉम कुछ नहीं, अब आप जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं भी आराम कर लेता हूँ। अब उस नकली करिश्मा का वहाँ रुकना ठीक नहीं था, तो वो अपना मन महसूस कर उसके कमरे से बाहर निकल गई। नकली करिश्मा को बाहर आता देख तारापरी एक पल में वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई थी। वो उन माँ बेटे की एक एक बात सुनकर आई थी। अब वो ये सोचने लगी कि अब ये तिलिस्मी पत्थर की क्या कहानी है। तारापरी ये तो समझ चुकी थी कि ये करिश्मा के भेष में जो कोई था वो जरूर अमन के पास रखे उस पत्थर के लिए ही वहाँ आया था। तारापरी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर कौन सा पत्थर था वो जिसे ये लोग तिलिस्मी पत्थर के नाम से पुकार रहे थे। उनकी बातों से वो इतना तो समझ गई थी कि वो पत्थर कोई मामूली पत्थर तो नहीं था, जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज था। तारापरी ने इस तिलिस्मी पत्थर के राज से पर्दा हटाने का सोच लिया था, और उसने ये भी जान लिया था कि अगर मुझे उस पत्थर के बारे में पता लगाना है तो पहले मुझे अमन सिंह राठौड़ का अतीत खंगालना होगा।